killed Kesi, Sankhachud and all others. Then he came from Vrindavan to this place. This is the place of the father of Yashoda Devi. So Krishna used to live here for so many years. When he was one day playing here, nearby Damasur, a demon of Kansa, sent by Kansa, came here and he took the vase of
Sakha.
Sakha. Vase means
dress.
Not dress. But he takes the...
He disguises himself just like Sakha.
To make him as a Sakha. Krishna told him, very good, where you are. Now you should play. Thus he began to play hide and to search. Some became thief and some became
Ram.
He became thief. That demon, Damasur, became thief. Thief. And all wild became ram. He began to take one by one and used to keep them in that cave. At that time that cave was so big, so deep, so about lakhs and lakhs sakhas he took and placed in them and keep a very heavy stone there on the door. Krishna Dat saw and he marked that, where are my friends? Only few friends are here. So where they have gone? At last he thought and saw that this is demon and he has kept all my friends there. Then he, with the help of Baldev Prabhu, he killed the demon and keep that stone from the door and opened the door and he took all his sakhas here. Damasur. Damasur mane kya?
Kya hota hai?
Bum mane akash.
Akash.
Akash mein ghumne wala.
He can, without any form, like a zero, can walk everywhere. So he wanted to, he wanted that Krishna should not kill me because I have no shape. How Krishna can kill me? But Krishna can kill all the demons in what stage they may be. इसलिए यहाँ पर बेमासुर का वध का स्थान है. कृष्ण ने यहाँ पर बेमासुर का वध किया, उसका निर्दर्शन अभी भी ये केव है. अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर भोजन थाली में. यहाँ से ये करते करते उनको दोपहर हो गया, बड़ी भूख लगी और भूख लगने के बाद में उन लोगों ने सोचा जैसे पास ही कहीं सरोवर हो वहाँ हम खाएंगे. तो सरोवर के पास में अभी हम लोग चल रहे हैं जहाँ पर पत्थरों की थाली बनाई, पत्थरों की कटोरी बनाई और सरोवर को ही उन्होंने अपना पानी लेकर के पान किया. अभी हम लोग चले. जय बोमासुर गुहा की जय.
हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बैठ जाओ, बैठ उधर सामने बैठ. हम लोग यहाँ पर उपस्थित है, ये काम्य वन के अंतर्गत में ये भोजन थाली कहलाता है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा वो बेमासुर का वध किया और उसी में लग गया, दोपहर हो गया, बहुत विलंब हो गया, लोगों को भूख लग गई, बच्चों को. तो यहाँ पर सिक्के पर रखे हुए थे जो फल मूल मक्खन मिश्री उनकी मैया ने भेज दिया था, रोटी भेज दिया था, अचार पेटी भेज दिया था.
और सबको यहाँ पर उतार करके और चारों तरफ में सब बच्चे बैठ गए। कृष्ण वहां पर एक सिंहासन है पासी में, जहाँ पर भोजन थाली थी वहीं पर बना हुआ है सिंहासन जैसा, अभी हम लोगों ने प्रणाम किया वहीं पर बैठ गए और सब सखाओं ने मिलकर के यहीं पर भोजन करना आरंभ कर दिया। थाली की जरूरत नहीं पड़ी, थाली और कोटेरी वहां पर अपने आप बनी हुई है, कृष्ण के खाने के लिए प्रकृति ने आप खुद ही बना दिया था, इसलिए उसी में रख करके सभी बच्चे ऐसा समझे जो कृष्ण के साथ मैं खा रहा हूँ, ऐसी अद्भुत लीला उन्होंने की। देखने में तो छोटा स्थान मालूम पड़ता है, किंतु छोटा स्थान होने पर भी धाम ऐसा है जो देखने में अणु से अणु और विभू से विभू है, जैसे कृष्ण है वो अणु से भी अणियान और विभू से भी विभू है। इसलिए ऐसा मत सोचना जैसे ये सब कल्पनाएं हैं और किसी ने पत्थर ऐसा बना करके रख दिया, यदि होता तो पुराणों में आज से हजारों लाखों वर्ष पहले के पुराणों में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, दूसरे पुराणों में है, इसके बाद में शंकराचार्य जी आए, मध्वाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी आए, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु आए, सब लोगों ने ऐसे क्यों कहा, यदि ऐसी बात की तो, इसलिए ऐसा नहीं, ये सब पुराणों इत्यादि में सबका ये वर्णन है, ये भोजन थाली है, ये काम में बन है, यहाँ गुहा ब्रह्मासुर का वध किया, यहाँ पर सखाओं ने खाया, सभी जितने सखा थे उन्होंने देखा ये हम कृष्ण के साथ में भोजन कर रहे हैं, दूर किसी ने नहीं देखा, जो पीछे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, जो इधर में अगल बगल में बैठे हैं, सब लोगों ने ऐसा देखा जो कृष्ण हमारे ही सन्मुख बैठ करके और छीना झपटी करके खा रहे हैं। कोई कोई पकौड़ी बना करके घर से ले आए, आलू की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, कुमड़े की बगौड़ी और अब सब फलों की पकौड़ी बना करके लाए, और किसी सखा ने क्या किया, सुगल सखा ने क्या किया, एक पकौड़ी में से आलू निकाल लिया और उसमें एकदम खूब कड़वी
नीम का पत्ता
लेकर के उसमें ठूस दिया, भर दिया और मधुमंगल के मुख में दे दिया कि खाओ। वो सोचा जिसे खूब अच्छी होगी, खाया तो देखा तो थुथू करने लगा और गालियां बकने लग गया। इसी तरह से यहाँ पर सब खा रहे थे, लोगों ने खाया। पासी में ये कुंड है, कुंड में उन्होंने भर फूक करके पानी पिया। ये काम्य वन है, काम्य वन मैंने क्या, जितनी तरह की कामनाएं होती हैं वो सबको पूर्ण कर देते हैं ये काम्य वन। ये साक्षात बलदेव प्रभु जी हैं। तो काम मने साधारण ये संसारिक मत समझो, संसारी कामनाएं वासनाएं मत समझो, इसको ये विनष्ट कर देते हैं काम बन। और उसके बदले में गोपियों की प्रेम रामानाम काम तो गोपियों के प्रेम का नाम है काम,
प्रेमैव गोप रामानाम
प्रेमैव गोप तो ये गोपियों के प्रेम का नाम काम है। ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, विशेष करके गोपियों का जो प्रेम है, जो देखने में काम जैसा लगता है वो काम है। ये विषयों के प्रति हमारी जैसे प्रीति है, कृष्ण के प्रति वैसे ही प्रेमी हमारी प्रीति होनी चाहिए।
विशेष करके
यदि अपने लिए
यहाँ पर कोईसर लीला का स्थान है,
लिखा तो है बाल्य लीला का, किंतु बाल्य भी है कैशोर का भी,
क्योंकि गोकुल में तो जन्म उधर में ही हो गए,
होने से भी मैंने गोकुल के बाद में हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में इधर में आ गए, इसलिए बाल्य लीला का भी है। बाल्य माने पौगंड लीला, पशु गोचारण इत्यादि का यहाँ पर स्थान है, और शासक में किशोर लीला का भी ये स्थान है, उद्गम जब हो रहा है वय संधि का उस समय का ये लीला का सब स्थान है। यशोदा मैया अपने बच्चे को लेकर के अपने पीहर में आई और यहाँ पर वो सब लीलाएं हो रही, चरण पहाड़ी इत्यादि का ये जो है। और काम्य मन विशेष करके, काम्य मन होता है मनोहर, मनोहर मैंने क्या, कृष्ण की मनोहर लीलाएं यहाँ पर हुई, कृष्ण की कामना को गोपियों ने पूरा किया और कोई विश्व में नहीं कर सकता है, सखा भी पूरा नहीं पूरा कर सकते हैं, यशोदा मैया भी पूरा नहीं कर सकती, और दास लोगों की और सखा की तो बात ही क्या, कुछ कुछ रह जाएगा, पूरा करेंगे कुछ कुछ, किंतु कुछ कामनाएं कृष्ण की रह जाएंगी। गोपियां उनकी इस कामना को जहां पर पूर्ण करती है वो है काम्य वन। इसलिए काम्य वन बहुत ही मनोहर और सब प्रकार से ये वन है, अच्छा सुंदर वन। इसमें सब प्रकार की लीलाएं हुई हैं, पौगंड से लेकर के किशोर इत्यादि की जितनी भी लीलाएं हैं, ये गोचारण के बहाने ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों में आते और मिलते। चरण पहाड़ी को मत समझना ये केवल सख्य रस का वहां है, सखाओं को छोड़कर के चरण पहाड़ी पर चढ़ गए। मैं तो नहीं जा सकूंगा इसलिए वहां की कथा बोल देता हूँ। चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी मैंने क्या, चरण पहाड़ी ये है कि सखाओं के साथ में खेल रहे थे कहीं इधर उधर में, और झट से उनको मालूम नहीं होने दिया और वहां से सखाओं को खाने पीने और दूसरे काम में लगा दिया, और केवल मात्र सुबल को साथ ले लिया या मधुमंगल को साथ ले लिया और उनको भी छोड़ दिया नीचे, और ऊपर चरण पहाड़ी पर पहुंच गए, वहीं से बंसी वादन की और वहीं पर सब पत्थर एकदम पिघल गया। गोपियां भी वहां पर आ गईं। वो चरण पहाड़ी क्या है, नद्दस तदाव पधार्य मुकुंद गीता आवर्त लक्षित मनोभाव भक्त लेगा आलिंगन स्थगित उर्म भूवई मुरारे गृहंति पाद जुगलम जमुना नदी काम के वेग को रोक न सकी और उनके चरणों में अपने प्रेम को अपने कमल के फूलों के बहाने हाथों में लेकर के और कृष्ण के चरणों में उपहार दे रही है, मानो अपना हृदय कमल उपहार दे रही है उनके चरण। कृष्ण ने मानो ग्रहण नहीं किया, पहले तो एकदम बस तत्थल तक चढ़ गई, ऊपर भर गया यहां तक, किंतु कृष्ण आत्मा राम जैसे पड़े रहे तो जमुना जी लज्जित हो गई और उनके चरणों में पहुंचे और चरणों में उपहार देने लगे। मनोभव भग्न बेगा, वहां पर
मन के
मन का जो भाव माने काम
मन के
ये सब चीजें भग्न हो गया। भग्न माने क्या, भग्न माने जमुना की धारा रुक गई, इतना काम हुआ जो चलना भूल गई और नीचे का पानी भी ऊपर में आने लगा, ऊपर का पानी आने लगा, आवर्त के रूप में दिखने लगा और अपने काम को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर। ये चरण कमल चरण पहाड़ी के ऊपर में है, साधारण नहीं। कौन सा चरण कमल, बरहा पीड़म नठवर बपु कर्ण है नौमिधते अप्र पुषे तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपुच्छल मृदुपदे। वो चरण कमल चलते हैं पृथ्वी पर। आज पृथ्वी का कौन सा सौभाग्य है, बराह बापू से
नहीं, राम बापू से भी नहीं,
बराह बापू से मैंने बराह होकर के जो पृथ्वी को अपने दांत पर धारण किया और पृथ्वी ने उनके चरण को स्पर्श किया नहीं, रामचंद्र जी बन बन में डोले बिना पादुका के, इसलिए पृथ्वी जी आज पुलकित हो रही है।
वामन देव के लिए भी नहीं,
वामन देव जी तीन पगों से पृथ्वी को माप लिए और अपने चरण अंकित कर दिए, ब्रह्मा जी ने उसको धोया, आज पृथ्वी उसके चरण को पाकर के आज बड़ी पुलकित हो रही नहीं, इसलिए पुलकित हो रही है, इसलिए पुलकित हो रही है आज पृथ्वी जी। ये पृथ्वी पर कृष्ण के सुकोमल चरण पड़ रहे हैं आज कृष्ण के रूप में। और कौन सा चरण कमल, तत्तेषु जात चरणाम्बरु हम तनेषु भीता
प्रियमयेषु
कर्कशेषुत गोपियां बड़े प्रेम से डरते डरते उनके चरण कमलों पर अपने हृदय में रखती हैं। आज उस चरण से ये बनबन में ये काम बन में देख रहे हैं, चारों तरफ में पहाड़ी कंकड़ कांटा फूस चल रहे हैं। गोपियां उन चरणों को अपने हृदय में वहां पर रखा, कहां
चरण पहाड़ी
हैं, और वहां पर रखने से ही राधा जी के साथ में होने के साथ साथ में वो पत्थर पिघल गया, कृष्ण का हृदय पिघल गया और हृदय पिघलने से सब कुछ पिघल गया और पिघलने के साथ साथ में पहाड़ी भी पिघल गई, बस उनके चरण अंकित हो गए। ये चरण कमल है वहां, और भी बहुत से दिखे गए हैं चरण कमल के, लीला स्वयंवर जय श्री। वो चरण कमल जिनको राधा जी अपने कोटि कोटि प्राणों से निर्मंचन करती हैं वो चरण कमल, ब्रह्मात्यादि ध्यान धरते हैं वो चरण कमल नहीं, शंकर जी वो धरते हैं जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखई कर्ण चूर्णम अनंत शक्ति राधिका चरण रेणु
मनुष्य।
अभी तक तो कृष्ण की चरण रेणु की बात कहा, ऐसे जो कृष्ण है वो जिसके चरण रेणु से स्मरण करने मात्र से वो कृष्ण जो देवताओं के लिए भी ब्रह्मा इत्यादि के लिए अगम्य है अगोचर है, उनके चरण उनके चरण कमल उनके हृदय में ध्यान में नहीं आ सकते। और राधिका जी का स्मरण करते ही इस चीज का राधिका जी के चरण कमल की धूली कणा का स्मरण यदि कोई करे कृष्ण अपने आप बस, ऐसे चरण कमल का आप लोग वहां पर दर्शन करें। साधारण सखरस में ही मत समझेंगे, ये सखरस ये काम्यवन केवल सखरस का या दासरस का अथवा ये सखरस इत्यादि का ही नहीं है, काम्य माने अंतिम काम समझो ये काम्यवन में ये पूरा होगा। इसलिए वहां के वृंदावन के गोपीश्वर महादेव यहाँ पर कामेश्वर महादेव बन करके बैठ गए, कामेश्वर मैंने क्या वही काम समझो, ये जागतिक काम मत समझो। जागत के लोगों को धतूरा दे देते हैं, धतूरा समझते हैं ना जिस आदमी
पागल हो जाता है,
पागल होकर के या मर जाता है। ये विष ऐसे ही है, इस विष में हम लोगों को नहीं जाना है। हम गोपेश्वर से वो काम की अभिलाषा करते हैं जो अपने हृदय में वो कामना करते हैं, पाया है कि नहीं पाया है कोई पता नहीं। नारद जी जिस काम को नहीं पाते हैं ये काम बन में हम इसलिए आए हैं कि वो कामना पूर्ति हो जिस कामना के द्वारा राधिका जी गोपियां सब कृष्ण को संतुष्ट कर देती हैं, कृष्ण तृप्त हो जाते हैं, उस वहां पर हम लोग आए हैं। आप लोग यहाँ पर कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करें, राधा जी के चरण कमलों की विशेष वंदना करें, और वंदना करके आप लोगों की कामना यदि ऐसी हो कि पूर्ति हो, बस यही कह करके मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यहाँ पर जो कुछ भोग लगा है सब लोगों को थोड़ा सा दो चार आदमी मिल करके बांट दिया, और बाकी उन्होंने वृंदावन में काली दा के पास में वो भजन करते थे। वृंदावन में लिखा होगा, यहाँ पर भी लिखा हो सकता है, और पासी में 84 कुंड है, 84 तीर्थ है, 84 मंदिर है, और विशेष करके हस्तिनापुर से इसका संबंध है। हस्तिनापुर यहाँ से पड़ता है बीच में खंडव वन पड़ता है इसी के पास में, दिल्ली और यहाँ के बीच में खंडव वन, वही पर दहन करके अग्नि को तृप्त करके अग्नि से बर दिया था, तीर धनुष जो अक्षय तीर और धनुष उन्होंने पांडवों के स्थान है वहाँ पर हम बतलाएंगे पांडवों का सब, विमल कुंड के पास में, और वहाँ पांचों पांडवों का स्थान है वहाँ पर सब। यहाँ पर यशोदा मैया का पीहर है, वहीं पर सिद्धपंथ रामेश्वर है, और वहीं पर कदम्ब खंडी है, कदम्ब खंडी यहाँ से बरसाने के बीच में है, उधर से वहाँ पर हम इस बार नहीं जाएंगे। वहीं पर सुनहरा गाँव है, राधा जी ने अपना हार शंकर जी को पहना दिया अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लौकिक रीति के अनुसार।
ब्रज में तो पूर्ण होने वाली है, जिस कामना से कहा वो तो पूर्ण होगी नहीं ब्रज में,
पूर्ण होगा नहीं
क्या शंकर जी वो हार पहनाया, माँ जी पूर्ण कैसे हुई?
इसलिए नर लीला में ऐसा हो, उनसे प्रार्थना करो, वो तो शंकर को भी बात देने वाली है।
तुलसी कृष्णा प्रयासी, तुलसी
और ब्रह्मचारी जी ने भी बतलाया जितनी प्रकार की कामनाएं हैं वो कृष्ण यहाँ आने से काम्यवन में अपने आप पूरी हो जाती है। कैसे पूरी हो जाती है? रहेगा न बांस न बजेगी बांसुरी, सब कामनाओं को उखाड़ करके फेंक देते हैं और केवल मात्र एक भक्ति की कामना रखते हैं, इसलिए ये काम्यवन है। जो कोई कामना लेकर के भी आए उन कामनाओं को हटा देना चाहिए। अन्ना अभिलाषता सुन्नम ज्ञान कर्माध्यनाप्रतम, तब ये भक्ति होगी। इसलिए ये काम्यवन है। काम्यवन माने भक्ति की कामना। भक्ति की कामना पांच रसों में ही होती है, किंतु पांच रसों में कामना जो है कृष्ण की पूरी नहीं होती। जो कामना दास वाले नहीं पूरा कर सकते, सखे वाले पूरा नहीं कर सकते, वात्सल्य वाला नहीं हो सकता है पूरा, वो कामना पूरा होती है कहाँ? कृष्ण की कामना कौन पूरता है, वो पूर्ण करता है? गोपियां एकमात्र करती हैं। गोपियों में भी सभी मिलकर के भी वो चाहे तो कृष्ण की पूरी कामना नहीं होगी, कुछ हद तक होगी, केवल एक कामना जिसके द्वारा वो आराधित होती है, अने आराधितो नूनं भगवान हरि ईश्वर है। एकमात्र एक गोपी हैं श्रीमती राधिका जी, जो कृष्ण की संपूर्ण कामनाओं को संपूर्ण रूप से पूरी करती हैं। भाई राधिका जी कोटि कोटि रूपी में अपने काय व्यू से गोपियां हुई हैं, कुछ साधन सिद्धा भी हैं, किंतु वो जो गोपियां हैं वही कृष्ण की कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए ये काम्यवन है। काम माने मनोहर भी होता है। कृष्ण मनोहर हैं, गोपियां मनोहरा हैं। यहाँ पर जितने भी क्षेत्र हम लोग गए, चरण पहाड़ी का भी हमने कहा, लुकलुकी भी कहा, यद्यपि कृष्ण लुकलुकी में वो कृष्ण वहां पर छिपते हैं, किंतु वो यथार्थ में वो है क्या? लुकलुकी कुंड। यहाँ पर राधा जी छिप जाती हैं और कृष्ण खोजते हैं। किसलिए खोजते हैं? उनकी कामना पूर्ण नहीं हुई। कामना क्या है? कृष्ण को ही सब मूल रूप से प्रसन्न किया जाए, कृष्ण की जिसमें प्रीति हो। और कामनाएं हो जो है वो काम है, किंतु गोपियों का काम प्रेम है। यही समस्त शास्त्रों में वर्णन किया गया। हम लोग काम में बन में आए हैं, जबकि कृष्ण की लीला समाप्त हो गई उसके 5000 वर्ष के बाद में, आज से 500-700 वर्ष पहले, 500 वर्ष नहीं बल्कि 300 वर्ष पहले मुगलों के राज्य में यहाँ की समस्त वृंदावन की जो शिव विग्रह थे वो सब यहां से हट गए, चले गए। क्यों? इसलिए कि पुजारी लोग ठाकुर जी की ठीक से सेवा नहीं कर सके, इसलिए उनकी सेवा नहीं ग्रहण की। उसके मालिक बन गए और उसके प्रणामी इत्यादि को अपने भोगों में लगाने लगे। सेवा की भावना रहने से वो नहीं जाते। तो यहां पर समस्त विग्रह, वो हुआ था शिवाजी के साथ में औरंगजेब का विवाद हुआ था, शिवाजी मिठाई बांटने के बहाने से दिल्ली के जेल खाने से निकल करके भागे। अब उसमें सहयोग था जयपुर का नरेश का, बस जयपुर के नरेश से वो बिगड़ गया और उनका चिन्ह वृंदावन में समाप्त करने के लिए विशेष करके जयपुर नरेश के द्वारा जो प्रतिष्ठित विग्रह थे उन्हीं को ही उसने तंग किया, उन्हीं को तोड़वाया और दूसरे मंदिर को नहीं तोड़वाया। गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर इत्यादि का सब मूर्तियों को लेकर के वहां से पहले पड़ाव में राधा कुंड आए, दूसरे पड़ाव में यहां आए, फिर धीरे 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 चले गए जयपुर की तरफ। फिर जयपुर में सब विग्रहों की प्रतिष्ठा हुई, किंतु मदन मोहन जी को उन्होंने जौतुक के रूप उपहार के रूप में अपनी लड़की को दे दिया, उसको लेकर के वो करौली में लेकर के उन्होंने स्थापन किया, आज भी वहां पर वो है। यहां पर जब आए सब विग्रहों को लेकर के आए तो राधा जी तो आई ही नहीं, वो वृंदावन को छोड़ करके नहीं गई। यहां तक वृंदा जी आई किसी तरह से, किंतु ये सीमा है, छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कृष्ण भले ही छूट जाए किंतु राधा जी नहीं छूटेंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, आशा भरी अमृत सिंध मय कथनचित मया कालो मयाति गमिता के लिए सांप्रतम ही त्वंचेत कृपा मई विधास नैव किंग में प्राणो ब्रजेना बरोर उपकारी नाम। मुझे वृंदावन से भी कोई जरूरत नहीं है। हे श्रीमती राधिके, यदि आपकी कृपा नहीं हुई तो मुझे वृंदावन से जरूरत नहीं है, राधा कुंड से भी जरूरत नहीं है, गिरिराज से भी जरूरत नहीं है, और को तो क्या कहूं, हमको श्याम सुंदर से भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ सकता, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर। ऐसे ये वृंदा देवी, वृंदा देवी का ही बनाया हुआ ये वन है। उन्होंने अपने वन को श्रीमती राधिका के चरणों में अर्पित कर दिया और उन्हीं को वृंदावनेश्वरी बना दिया। ये वृंदा जी ही मूल है, कृष्ण की सखी हैं और राधा कृष्ण में मिलाने वाली ये हैं। कभी दूती भी बनती हैं, कभी सखी का भी काम करती हैं, कभी और कुछ करती हैं। साथ ही साथ में तुलसी जी उनके प्रकाश है, ये जो वृक्ष के रूप में देखते हैं, जिनका संबंध ब्रह्म वैवर्त के पुराण के अनुसार में जो देखा जाता है शंखचूर इत्यादि के संबंध का, वो सब उनकी छाया है। तुलसी जी की वसंत नहीं है, उनकी छाया, जैसे राधा जी की छाया दुर्गा जी हैं, काया राधिका जी हैं, उसी तरह से वृंदा जी की प्रकाश विग्रह है तुलसी, और तुलसी जी की छाया वो है, वो तुलसी जो शंखचूर से विवाह इत्यादि का प्रसंग आता है। उस गोलोक वृंदावन में कोई साप का और तामसिक भाव का वहां पर प्रवेश नहीं है, इसलिए जब कृष्ण जी के समस्त विग्रह यहां जब आए, यहां से जब जाने लगे जयपुर में, तो यहीं पर वो रह गई वृंदा, तो यहीं पर वृंदा जी तभी से प्रतीक्षा कर रही हैं जब कृष्ण आएंगे जाए। हम लोगों ने क्या किया, जब वृंदावन में तो अलक्षित रूप में थी, तो हमने देखा, तो मैं 3-4 वर्ष पहले वृंदा जी की आराधना की, जब आप पधारिए, तो हमने वृंदावन में सेवा कुंज में वृंदा जी को पुनः वहां पर सेवा कुंज में हमने पधरा दिया है। वृंदावन में वही एक मंदिर है जहां पर कि वृंदा जी का मंदिर है, जैसे यहां पर एक ही मंदिर है जहां पर गोविंद जी के साथ में ये वृंदा जी है, ये वृंदा देवी का ही मंदिर कहलाता है। आप लोग तो देख रहे हैं ये कैसी इसकी भग्न अवस्था हो गई है, पहले एक समय में ये कैसा होगा, इसका विशाल वैभव होगा, अब ये कामवन भी टूटा फूटा लगता है। जब मदन मोहन के तरफ हम जाएंगे और सब देखेंगे, केवल टीले कंकड़ और ये सब भरे पड़े हैं, पुराना स्थान हो गया। पहले बिजनेस का भी सेंटर था और राजस्थान का एक प्रसिद्ध नगर ये था, वाणिज्य का भी था और सब प्रकार से भक्ति का लोग, भक्त लोग सब आते थे। वल्लभाचार्य भी जिस समय आए थे उस समय तक समृद्ध था। इसके बाद में धीरे 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 ये सब चला गया, धीरे धीरे इसका वैभव सब नष्ट हो गया। जैसे भी हमको तो वैभव देखना है, वैभव तो सब समय वही है, ये दृश्यमान
प्रकाश
और एक होता है
अप्रकट प्रकाश,
अप्रकट नित्य प्रकाश, और एक होता है प्रकट प्रकाश, अभी दृश्यमान प्रकाश। प्रकट प्रकाश में कृष्ण आते हैं जब, तो वो प्रकट प्रकाश है, जब सब समय अपने नित्य धाम में रहते हैं तो वो अप्रकट प्रकाश अभी दिखता नहीं, और अभी जो दिख रहा है दृश्यमान है, इसमें कुछ भी नहीं दिखता, टूटा फूटा ऐसे भग्नावशेष टिल्ले फिल्ले यही सब दिखते हैं, बाल हो जा रूखा सूखा। किंतु हाँ, यहाँ पर वही प्रज है, जिनके प्रेम के नेत्र है उन प्रेम नेत्रों से ये सब देख सकता है। अभी हम लोग गोविंद जी को, वृंदा जी को, सबको हम लोग प्रणाम करेंगे। अभी यहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है, जरा बहुत दूर है, गोपीनाथ का भी 1-1.5 मील के करीब है, 84 खंभा है, इसके अतिरिक्त करीब करीब 84 तीर्थ स्थान, 84 कुंड, 84 विग्रह मंदिर इत्यादि सब बहुत कुछ है। बहुत विशाल जगहों में ये सब बना हुआ था, हमारे गोस्वामी लोग भी यहाँ आकर के भजन करते थे और यहाँ पर सिद्ध प्राप्त होते थे। अब हम लोग यहाँ से विमल कुंड में चलेंगे, वहां पर हम लोग थोड़ा सा प्रसाद साथ पाएंगे, पहले स्नान करेंगे, जो जिसको स्नान करना होगा आचमन करेंगे, दर्शन करके वहाँ की हरि कथा बोल करके, तब थोड़ा सा प्रसाद पा करके विश्राम करेंगे, और ब्रह्मचारी लोग यदि दौड़ सकते हैं तो इसी बीच में जा करके लंका पार करके आएंगे बंदरों की, और हम लोग वहाँ पर रहेंगे। इसके बाद में सेतु बांध रामेश्वर वहीं पर पासी में पड़ेगा, जाते समय में जसोदा जी का यह पड़ेगा, पासी में गया कुंड पड़ेगा, और भी हजारों कुंड तुंड सब यहाँ पर है। और जाते तब फिर हम जब चलेंगे यहाँ से नंदगांव की तरफ में, तो चलते समय कामेश्वर जी का वहाँ पर दर्शन करके और फिर हम लोग नंदगांव की तरफ में चले गए, वहाँ पर चरण पहाड़ी का दर्शन करेंगे। और यदि समय मिल गया, यदि एक घंटा का भी, तो रूप गोस्वामी का भजन स्थली का हम लोग दर्शन हम तथा कर लेंगे। हम भाई मधुरे न सुभद्रा देवी का बहुत प्रेम। कमल मन होता है मनोहर, सबसे सुंदर बनो है, ये बहुत सुंदर बन है। इसमें 84 तीर्थ है, 84 कुंड है, 84 सब देवता लोग हैं। ऐसी यहाँ की धूलि कणा सभी पवित्र है। तो हमने चरण पहाड़ी में और सब जगहों में बतलाया, यहाँ की विशेष ये कथा है, ये विमल कुंड है। भारतवर्ष के पश्चिम में सिंधु देश है, अब वहां पर हो गया है पाकिस्तान। पहले वो हमारे पंच नदियों का वो प्रदेश था, वहां के घोड़े बड़े सुंदर होते थे, यज्ञ स्थलियां वहां पर रहती थी। वहां का एक राजा था, उसका नाम था बिमल, बहुत ही प्रतापी राजा था। उसके घर में कम से कम तो 5000 स्त्रियां उसकी थी, विवाह किया था, किंतु किसी को एक लड़का पैदा नहीं हुआ, केवल लड़कियां ही लड़की पैदा हुई, सब मिलाकर के 16000 उसकी लड़कियां थी। ये लड़कियां कौन थी? स्कंद पुराण के अनुसार में ये अयोध्या में जो 60000 ऋषि लोग थे, ये लोग कृष्ण की उपासना करते थे पति के रूप में पाने के लिए। अयोध्या में भी कुछ राजकुमारियां थी, सीता जी की सहेलियां, वो रामचंद्र जी को रूप को दे करके उन्होंने देखा कि सीता जी से इसके शादी हो गई और हमारी शादी तो हुई नहीं, किंतु मन ही मन राम जी को संकल्प किया ये हमारे पति रहेंगे। तो राम ने उनको कहा, इस जन्म में हम सीता के अतिरिक्त और किसी को बाह्य रूप में हम अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। कृष्ण लीला में जब हम आएंगे, कृष्ण का अवतार लेंगे, उस समय में तुम लोग वहां पर सिंधु राजा के घर में तुम लोग पैदा होगी, और वो राजा आकर के हमारे के साथ में तुम्हारी वो सबका गांधर्व विवाह कराएगा। इसलिए जोग माया ने उनका जन्म दिया सिंधु राजा के कन्याओं के रूप में, 16000 कन्याएं थी। वो राजा महाभारत के पहले अपनी सुंदर सुंदर कन्याओं के लिए वर खोज रहा था। नारद जी ने उनको कहा, यदि शादी करनी है तो तुम मथुरा चले जाओ, वहां पर कृष्ण है, उनसे शादी करो। वो यहां आया तो देखा जी कृष्ण तो वहां नहीं है, वो ब्रज में चले आए थे। उसी समय में शांतनु कुंड आप लोगों ने देखा होगा, सतोहा मथुरा के पास में, वहां पर भीष्म पितामह जी आए थे, शांतनु उनके पिता लगते हैं, अपने पिता के पास में आए थे। उनसे उस राजा की भेंट हुई, राजा उनको जानता था। उन्होंने कहा कि मैं किसके साथ अपनी लड़की की शादी दूं और कैसे दूं? उन्होंने कहा कि कृष्ण से ही शादी दे दो। तो फिर वो घूमते घामते घामते उस समय कृष्ण कामेवन में थे, कृष्ण का मामा का घर भी यही है पासी में, वो सेतुबंद रामेश्वर के पास में पड़ता है। कोई और भी कई जगह बात लाते हैं तो वो भी संभव है, क्योंकि वो लोग तो डेरा डाल करके इधर उधर रहते थे, जैसे नंद बाबा यहाँ पर रहते थे, वहाँ गोकुल में रहते थे, नंदगांव में रहते थे, यहाँ रहते थे, छट्टीकरा में रहते थे, बहुत से जगह में रहते थे, ऐसे ये लोग घुमा करते थे। तो यहाँ आए तो कृष्ण से उनकी भेंट हुई, कृष्ण को देख करके उन्होंने प्रतिज्ञा की जैसे हम इसी के साथ में अपनी लड़कियों की शादी देंगे। उसी समय उन्होंने अपनी लड़कियों की गांधर्व विवाह से शादी की। कृष्ण वैसे राजी नहीं हुए उनको ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उनका उपनयन भी नहीं हुआ था, इसलिए उनको गांधर्व विवाह से उन्होंने ग्रहण किया। राजा की मुराद पूरी हुई। उन्होंने वर मांगा कि मैं अब इसको ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उन्होंने देखा कृष्ण ने जैसे यहीं पर रहे, इसलिए उन्होंने कह दिया तुम विमल कुंड के रूप में यहीं पर रहेगा, तुम पवित्र रहेगा, तुम्हारा जो स्नान करेगा जल में आचमन करेगा स्पर्श करेगा सबका हृदय निर्मल हो जाएगा, उसमें विमल भक्ति उसमें प्रवेश करेगा। और उनको प्रकारांतर से लेकर के द्वारका में भेज दिया जोगमाया के प्रभाव से, वही पीछे से महिषियां हुई, इसका भी संबंध कुछ कुछ लगता है, नहीं तो कल्प भेद हरि कथा सुहावा, कल्प के भेद से ऐसा संभव है, कोई भी असंभव चीज नहीं है जो माया के द्वारा। तो इस तरह से वहां ये विमल कुंड हुआ। विमल कुंड में स्नान करने से भगवत भक्ति होती है, प्रेम होता है। यहां पर पांडव लोग रहते थे, उन लोगों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास तो उन्होंने विराट में उन्होंने किया। विराट कहाँ पर है? कोई कहते हैं नेपाल के पास है, कोई कहते हैं मध्य प्रदेश में।
अलवर से आगे,
अलवर से आगे पहाड़ में है ना, तो उसी को विराट नगर कहते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि नहीं,
स्वराज खम्बा कोई बताते
हैं,
स्वराज खम्बा को स्वराज जी खम्बा काटी दे।
तो वहां पर विराट नगर में उन्होंने अज्ञात वास किया था, किंतु इसका अधिकांश समय 12 वर्ष में घूम फिर करके आप करके यहीं पर रहते थे। पासी में जब यहां पर आ रहे थे, हिडिम्बा नामक एक राक्षसी बहुत अपना रूप सुंदर बनाया और भीम के रूप पर आसक्त हो गई। भीम के पास में आई, मैं आपसे शादी करनी चाहती हूँ। तो वो बड़े लज्जित हो गए। मैं कहा जब मैं नहीं जाता, कुंती मैया के पास में जाओ। तो कुंती मैया के पास में वेश बदल करके गई, सुंदर परम किशोरी बन करके, और हाथ जोड़ करके उनके चरणों की बहुत सेवा की। तो उन्होंने प्रसन्न होकर अच्छा जाओ तुम शादी कर। जब भीम के पास में देखा तो उसका भाई वहां पर भेजा था ढूंढने के लिए कहां से खाद्य मिलेगा, मनुष्य मिल जाए तो उनको खाएंगे। अरे अरे मेरी तू बहन होकर के मनुष्य से प्रेम कर रही है, अभी तुमको भी मारता हूं, उस आदमी को भी मारता हूं। तो मरने के लिए दौड़ी, तो भीम ने उसे बीच ही में उसे मार डाला। और फिर उसे शादी उसी के पुत्र घटोत्कच था, जो महाभारत युद्ध में बहुत ही पांडवों का पक्ष लेकर के समर किया था। और घटोत्कच का पुत्र एक और था
बर्बरी,
बर्बरी वो और भी प्रताप थी, वो तो भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन सबको पछाड़ दिया। वो चाहता था एक मिनट में सबको मार जाता, इसलिए कृष्ण ने उसको चक्र सुदर्शन से काट दिया। तो उसने कहा कि भाई महाभारत युद्ध में हमको रहने दो देखने के लिए, देख दिया पर उसको रख दिया। हाँ हाँ, तो इस तरह से उन्होंने कृष्ण ने पूछा जाए भाई महाभारत युद्ध में ये किसको सबसे वीरता का कौन काम किया। अर्जुन ने कहा जी मैं सबसे बड़ा काम किया, मैं नहीं रहता तो महाभारत युद्ध ये पांडव लोग नहीं जीत सकते। भीम ने कहा जी बात अधिक मत करो, मैं सबसे वीर हूँ। युधिष्ठिर ने कहा जी हमारे धर्म के प्रभाव से ये जीत होने, तो जीत नहीं होती। जब सभी लोग कहने लगे तो कृष्ण का जय जरा ठहरो, इससे पूछो तो परवरीक से। तो वहीं से बोला जी हमने देखा जैसे कोई भी वीर नहीं है, केवल कृष्ण ही लड़ा, इस पक्ष से उस पक्ष से वो कृष्ण ही एकमात्र देखा, और कृष्ण ही नहीं युद्ध किया और कृष्ण ने नहीं जय किया, सबका अभिमान दूर कर दिया। तो यहाँ पर एक और भी बात है, यहाँ पर जब पांडव लोग थे साथ साथ में द्रौपदी भी थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा ऋषि को बहुत प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनसे कहा जी प्रभु एक बात हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। उन्होंने कहिए आप यही यहाँ पर जितने 60,000 ऋषियों का जो मैंने सम्मान किया है, आप इसमें विमल कुंड पर जाइए, वहां पर महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी वहां हैं। बड़ी अभ्यागत करती हैं और सब संतों को बड़ी सेवा करती हैं लोगों की। आप वहां पर पधार करके उनका प्रसाद पाइए। किंतु ऐसे नहीं, एक बात उसमें शर्त है, आप जाएंगे दोपहर के बाद में, 1 बजे 2 बजे जाएंगे, जब पांडव लोग खा चुके होंगे, द्रौपदी अपनी बटलोही मांझ दी हुई, और इसके बाद में आप पहुंचना। क्यों? उनको वरदान था, सूरज से कोई थाली मिली थी, जिस थाली बटलोही, यदि द्रौपदी नहीं खाया है तो विश्व ब्रह्मांड को तृप्त कर सकती है, एक दो आदमी को नहीं विश्व ब्रह्मांड को तृप्त कर देगी। और यदि उसने खा करके बर्तन माँज करके उल्टा अंधा दिया तो फिर एक दाना भी उसमें नहीं निकलेगा। तो वो ऐसे समय में आए 2-3 बजे और आकर के उन्होंने कहा बड़ी भूख लगी है, हम यहाँ पर भोजन करेंगे कुछ। पांडवों से कहा, महाराज युधिष्ठिर और सब पांडव उनके चरणों में गिरे, महात्मा जी विमल कुंड में स्नान कीजिए, अंधी कीजिए, पूजा उजा कर करके तब तक आपका भोजन एकदम तैयार मिलेगा। और देखा जो घर में सूखा कुछ भी नहीं है, उन्होंने द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम हमारी लाज बचाओ, तुम्हारी बात कृष्ण सुनते हैं, इसलिए तुम कृष्ण को पुकारो, आएंगे हमारे पुकार से नहीं आएंगे, और नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे, बिना मौत के मरेंगे, या ऐसा कर देगा जटा उखाड़ देगा, आग लग जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। उस समय में द्रौपदी जी ने एकांत कमरे में जाकर के बटलोई को सीधा कर दिया, बोले हे प्रभु आपने पांडवों की लाज रखी है, हमारी लाज रखी है, अभी पांडव लोग और हम लोग बेमौत मरेंगे यदि उनका भोजन नहीं कराया गया, इसलिए आप जल्दी से प्रसन्न होइए। इतने में देखा क्या, आंख खोली तो देखा जी मुस्कुराते हुए कृष्ण वहां पर खड़े हैं, पीताम्बर पहने हुए, मुरली और ये सब लिए हुए। सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा जैसे अरे प्रभु आपको तो इसीलिए बुलाया, आपको भूख लगी है और यहाँ पर ऋषियों को भूख लगी है, उनको यदि नहीं खिलाएंगे तो अभी अभी संपात डाल करके जला देंगे, आप कुछ बचाइए हमको, राजा पहले हमको खिलाओ इसके बाद में हम देखेंगे। अपनी बटलोही ले आओ, तो बटलोही में प्रभु हमने माँज करके औंधा रख दिया है। अरे ले तो आओ देखे, इसमें कुछ नहीं आ, तुम ले आओ। ले आए और ली आई तो उन्होंने उसको देखा ऐसे भीतर में, और देखा जे एक तीन का साग उसमें लगा है, इस अंगुली से, बीच वाली से नहीं और इससे नहीं, इस अंगुली से लेकर के निकाला, बड़ी मुश्किल से नख के अंदर में वो आया, लेकर के मुख में ऐसे दे दिया और एक लोटा पानी लेकर के खूब दम भर पानी पी लिया और निकाल दिया। ऋषियों का पेट एकदम फूल गए, बेकार देखते ही, और सभी बेकारने लगे भाई क्या हो गया, खाया तो नहीं किंतु पेट दम हो गया क्यों। तस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, भगवान के प्रसन्न होने से सभी जगत प्रसन्न हो जाता है, उनके भोजन करने से समस्त लोगों का भोजन हो जाता है। यदि कृष्ण प्रसन्न न है और विश्व प्रसन्न भी रहेगा तो क्या कर लेगा, और कृष्ण प्रसन्न हो और विश्व यदि विरोधी हो तो क्या कर लेगा।
और ये नंगा बताता है बड़ा, तो ये कहता है नंगा नंगा कैसे कहता
है, करम सदा तन की रखवारी,
बहुत ठीक। ऐसे ही कृष्ण यदि रक्षा, इसलिए साधु संत लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं, ये महात्मा जी किसी की परवाह नहीं करते हैं, किसी के यहाँ मांगने के लिए जाते हैं ये किसी के यहाँ नहीं जाते, वैसे साधु संत लोग किसी की परवाह नहीं करते, भगवान के बल पर रहते हैं, किसी से विश्व ब्रह्मांड में निर्भय कोई है तो साधु संत है, जो भगवान का शरणागत है, और भगवान का शरणागत नहीं यदि लिया है ना तो संजय गांधी, इंदिरा और कौन थे तीनों,
राजीव
काट लिया ना बंदूक से मार करके खत्म कर दिया, कोई सेनाएं रख नहीं सकी,
जय श्री कृष्ण
हो गया। इसीलिए कृष्ण पर भरोसा करो और उनका भगवान करो। तो पांडवों की उन्होंने रक्षा कर दी। भीम को कहा जाए जल्दी से बुलाओ, जरा गदा हाथ में लेते जाना,
चिरन लाए
वो गदा यहाँ पर रख करके अरे महात्माओं जल्दी आ जाओ, भोजन तैयार है, जल्दी गरम गरम भोजन करो, पकौड़ी कचौड़ी राबड़ी मोहन भर खीर और टेढ़े तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बतलाएंगे पीछे, जरा नम्रता से होता है इसलिए ये पुष्प भी उठाया जाएगा तो इसी से इतना तो सुनेज का भाव है
पीछे
और अहंकार कम रहेगा तो नहीं,
नहीं।
तो इसलिए जबकि गए ऋषियों ने देखा और दुर्वासा ने देखा जो गदा लेकर के बुला रहा है, यदि नहीं जाएंगे और नहीं खाएंगे उसका रसोई बिगड़ेगी तो हमें गदे से मार करके चौपट कर देगा, इसलिए वहीं से जो भगे एकदम ब्रह्म लोग पार करके कहां जाने कहां चले गए, उनका पता ही नहीं लगा इस ब्रह्मांड में ही नहीं रहे, उनको याद आई
अम्बरीश
महाराज की बात आई, इसलिए वहां से भाग खड़े। यहां पर एक समय की बात है, पांडव लोग जब यहां थे तो दुर्योधन ने देखा कि शत्रु के छाती पर दाल दलनी चाहिए, वो कैसे दलती है, मान लीजिए कोई विपत्ति में पड़ा हो शत्रु और वहां पर हम जश्न मनाए, जश्न मनाए जानते हैं
अपने
भावे नाच कर रहे हैं तो शत्रु देकर के अपने आप मरेगा, इसलिए ये लोग तो दुखी हैं बेचारे, वनवास में दुखी हैं। उसने क्या किया, ये समस्त अपनी सारी समाज को लेकर वैश्याओं को लेकर के और लोगों को लेकर के और हजारों लोगों को लेकर के सेनाओं को लेकर के चारों तरफ में पड़ाव डाल दिया, एक तरफ में पांडव लोगों का था और बाकी तीन तरफ में बहुत दूर तक उनका पड़ाव था और रात भर गाना बाजा ये सब चल रहा है, इनको दिखला के पूरी छक रही थी
और वो भैया रो रहे
और नहीं ये लोग भगवत भक्त थे नहीं?
वो क्यों रो रही
है, वो रोने का कोई काम नहीं, वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं रात भर हल्ला हो और आज सोने का तो काम नहीं, आज आज भगवान ने बहुत अच्छा किया आज दिन भर रात भर हम लोग भगवान का भजन करेंगे और वो लोग जश्न मनाते हुए सो गए। दूसरे दिन उन पर आक्रमण किया पांडवों पर, उनको अपमानित करने के लिए इंद्र ने कहा अरे पांडवों पर ये आक्रमण कर रहे हैं, अपने सेनापति को नाम मुझे याद नहीं आ रहा, याद है
चित्ररथ
उनके सेनापति हैं, उनको आदेश दिया चित्ररथ हमारी देवताओं की सेना को लेकर के जाओ और दुर्योधन को कैद करके हाथ बांध करके पीछे से और उसको ले आओ,
स्वर्ग से फेंक दूंगा।
बस भीष्म पितामह कर्ण दुर्योधन और सब बड़े बड़े सातों महारथी थे, सातों महारथियों को मार करके प्लास्टर कर दिया मैदान में, उनको उनके सारे गहने ले लिए और दुर्योधन को पकड़ करके पीछे से मुस्की बांध दी हाँ और उसको लेकर के चले, घिघियाने लगा, घिघियाने पर भी छोड़ा नहीं, जब इंद्रलोक में ले जा रहे थे जब घिघियाने की आवाज आई इनके कान में महाराज युधिष्ठिर के, अरे ये तो सुजोधन की बात मालूम होती है, सुजोधन रो रहा है, दुर्योधन नहीं कहते थे, दुशासन नहीं कहते, सुशासन उनका नाम दिया था और इसको कहते थे
सुजोधन,
इतने भले आदमी थे और वो इनके विरुद्ध सब समय लगा रहता था, जब देखा जी हमारे भाई को ये पकड़ करके ले जा रहे हैं तो भीम को बुलाया, अरे भीम भैया जा करके जल्दी से छुड़ा लाओ, कहे मैं नहीं जाता आप जाइए हमको जरूरत नहीं, हमारा अपमान करने के लिए आया और देवता लोग उन्होंने पकड़ लिया तो अच्छा ही किया, मैं नहीं जाता। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उनके यहाँ पर थोड़ी पर हाथ रख दिया, भैया मेरी लज्जा तो रखो, भीम जरा उदंड है वो कभी कभी बात नहीं सुनता, तो मैं जानता हूं जरूर हमारी बात रखो भाई, दूसरों हम जब लड़ेंगे तो एक तरफ में वो 100 रहेंगे हम 5 रहेंगे, किंतु दूसरा यदि कोई आएगा ना तो हम 105 उसके साथ में लड़ेंगे, उस समय हम लोग एक साथ में रहेंगे, तुम जल्दी से उसकी रक्षा करो। अर्जुन ने सुनते ही उनका चरण छुआ और ऐसे बाणों की झड़ी लगाई, देवता लोग सब हार गए। और वहीं से बाण मारा जो चित्ररथ को पकड़ लिया, कैद कर लिया अपने बाणों से, और वहीं से सीढ़ी बना दी दुर्योधन के लिए, और दोनों तरफ में ये बना दिए
पकड़ने के लिए।
और वहीं से धीरे 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 वो तो छोड़ दिया, जो मर बेटा वहां वो तो गिरता तो चकनाचूर हो जाता, किंतु रेलिंग पकड़ करके धीरे 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 जला
ये लगना जाए।
इसके बाद में चित्र रथ को लेकर के और दुर्योधन को लेकर के अर्जुन भीम सब लोग भाई लोग उनको युधिष्ठिर महाराज के यहाँ, युधिष्ठिर महाराज के यहाँ जब आया तो दुर्योधन देखा जैसे इसे अच्छा था कि मैं मर जाता, आज जैसा हमारा कभी जीवन में अपमान नहीं हुआ। जिन शत्रुओं को मारने के लिए मैं अपमानित करने के लिए, और वो हमारे शत्रु हमारे भाई और मेरे प्राणों की रक्षा करके और युधिष्ठिर महाराज के चरण में हम लेकर के गिरा रहे हैं, इसे तो मेरा मर जाना चाहिए। इसका मैं बदला जब जीवित रहूंगा तो इसका बदला मैं खून के साथ में। लो उनको बचाया ना, दुष्ट लोगों का काम यह है वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, और साधु लोग अपनी धर्म नहीं छोड़ते, अपनी सत्यवादिता।
द्रौपदी हरण करे एक द्रौपदी हरण कर दुष्ट लग
जाते, अरे ठहर जाओ एक साथ में। तो इस तरह से दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की, मैं इसका बदला लूंगा किसी दिन। ऐसे ही दुष्ट लोग होते हैं, बुराई भलाई का बदला भी वो बुराई के रूप में। महाराज युधिष्ठिर ने कहा जे भैया तुम आप अपने राज्य में जाओ, सुख से जाओ, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक कोई भी दूसरा तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, हम दूसरों के लिए 105 है, इसलिए कोई चिंता मत करो। छोड़ तो दिया किंतु वो ऐसा अभिमान लेकर के और बुराई लेकर के यहां से चला गया। यही की बात है, एक दिन पांच जन लोग इधर उधर गए हुए थे भिक्षा के लिए, जीवन निर्वाह करते थे भिक्षा से, भिक्षा की जरूरत नहीं थी तो भी, या किसी काम से गए हैं, और घर पर एकमात्र द्रौपदी थी, वो कुंड में पानी भरने के लिए आई, जिसमें पानी भर रही थी उसी समय में जयद्रथ दुर्योधन का जीजाजी उसकी दुशला का पति जयद्रथ सिंधु नरेश में वो भी राजा था, वो यहीं से होकर के जा रहा था, द्रौपदी को देख करके मुग्ध हो गया, मोहित हो गया, पर जबरदस्ती उसको उठा करके रथ पर बैठाना चाहा, खींच कर लेकर के बैठा दिया, उस समय जोर से पुकारने लगी, कहीं तुमको लज्जा नहीं आती है, पांडवों के साथ में तब तो भीड़ नहीं सकता, तब गाली गलौज इस तरफ से दी किंतु माना नहीं, लेकर के जा रहा था, जब जोर से पुकारा तो इतने में पांडव लोग आ रहे थे, कहीं से शब्द सुना, अरे ये तो द्रौपदी पुकार रही है। बस अर्जुन और भीम दौड़े, वो देखा जी अर्जुन और भीम आ गए तब बस लेकर के बड़ी जोर से भागा, द्रौपदी को तो वहां पर छोड़ दिया और भागा। अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि आगे चारों तरफ में आग लग गई, चारों तरफ में आग लग गई, अब उसके घोड़े जा नहीं सके, और वहीं पर बाण मारा जैसे वहीं पर गिर गया। इतने में भीम और अर्जुन दौड़ करके उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके हाथ तो बांध करके ले आए जहां द्रौपदी थी। भीम ने कहा जैसे इस दुष्ट को कहो द्रौपदी जी आप रानी हैं, इसको अभी जान से अभी खत्म कर दो, एक गदा दूं प्रहार इसकी मुंडक निकल जाए। अर्जुन ने कहा बाण से एक ही से इसका गला उतार दूं, द्रौपदी जी ने कहा जैसे भी हमारा भी तो जीजा जी है, जिस प्रकार से तुम लोग मर जाने से मैं रहूंगी उस प्रकार से तुम्हारी बहन तो विधवा हो जाएगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि विधवा, तो इसको कुछ थोड़ा सा दंड दे दो। कहा जी अच्छे ठीक है, तो ये दंड क्या दिया जाए, कहा पांच चोटी रख दो और आधा मूछ मुड़ा दो। उनके आधा मूछ मुड़ा दिया और पांच सिखाई, एक सिखाई यहाँ, एक सिखाई यहाँ यहाँ कर करके
अगले भाई दीजा
और तिलक लगा दिया काजल का तिलक यहाँ गधे पर बैठा दो इसको और सामने मुख से नहीं पीछे की तरफ मुंह कर दो और आगे गधा चले और जुलूस बजाते हुए चलो और ऐसा सम्मान देकर सुख बजाते हुए इस तरह से प्रोसेशन करके उनको खूब सम्मान के साथ में उनको विदाई दिया। ये भी यही पर हुआ था ऐसे ये विमल कुंड
ऐसे दर्शन करो बाबा फिर ससुराल वाले में
ऐसे ये सब विमल कुंड में बहुत सी घटनाएं हैं। प्राचीन काल में बहुत से ऋषि लोग यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर तपस्या करते थे आराधना का। ये आराधना का स्थल है। इसके बाद हम यहाँ पर लंका अभी हम लोग नहीं गए, यहीं से प्रणाम कर लो सब लोग। यहाँ पर एक कुंड है जिसको सेतु बांध रामेश्वर कहते हैं। उस समय पानी भरा हुआ था। गत पिछले बार हम लोग आए थे पानी से एकदम लबालब भरा हुआ था। बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है।
अब तो सिंगाड़े हो रहे हैं।
तो इस पार में शंकर जी रामेश्वर की स्थापना कृष्ण ने करा दी और कहा ये सेत बांध रामेश्वर है। गोपियों ने कहा जैसे ऐसे गाल बजाते हो यथात में तुम्हारा कोई भी प्रभुत्व नहीं है। यदि तुम्हारा प्रभुत्व देखे जैसे सब पुल बांध दो। कहा जे देखेगी बंसी बजाई और लाखों बंदर एक एक चट्टान ले आकर के उसे एक मिनट के अंदर में उस पार बांध दिया। अजय देखो तो इस तरह से वहां पर सेत बांध रामेश्वर किया था। इस पार में वहां पर रामेश्वर जी का अभी भी यह है। उस रामेश्वर से इस रामेश्वर का महत्व अधिक है। उस रामेश्वर से इस रामेश्वर वह समुद्र पर लंका के पास में है तो वहां पर उन्होंने पुल बांधा था और यहाँ पर कृष्ण ने स्वयं बंदरों के द्वारा बंदरों के कहने से वो लोग पुल बांध दिए। ऐसे यहाँ पर कितने तीर्थ कितने स्थान सब हैं इसका कोई भी यत्ता नहीं है। रेणु रेणु में यहाँ पर कृष्ण की चरण धूलि है और परम पवित्र है। अभी हम कामेश्वर के यहाँ जाएंगे। कामेश्वर माने वृंदावन वाले जो थे
गोपेश्वर
यहाँ पर कामेश्वर हो गए। वहाँ पर कृष्ण भक्ति देते हैं गोपियों की भक्ति देते हैं और यहाँ पर भी वही चीज ये देते हैं और नहीं तो साधारण लोगों के लिए गांजा भांग रगड़ करके दे देते हैं तो ये खाओ पियो।
गोपीनाथ जी और
गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर हैं, चंद्रमा जी हैं,
बिंदा देवी गोविंद देव जी
वहाँ पर सब हम लोग हुआ है। अब केवल कामेश्वर जी का दर्शन है। अब कामेश्वर जी का दर्शन करते हैं और हम लोग नंदगांव होते हुए
पांडवों के भी तो वो है ना महाराज।
पांडव जी का यहीं पर हुआ। पांडवों के साथ में
द्रौपदी को
पांडव एक दिन प्यास लगी
धर्मकुंड
मैंने
हुआ था।
धर्मकुंड मैंने धर्म मैंने नारायण ही धर्म यहाँ पर है। यहाँ पर ये धर्मराज नहीं आ सकते। ये धर्मराज जो जन्म कर्म का ये सब फल तल देते हैं ये नहीं। यहाँ पर वहाँ पर नारायण यहाँ पर धर्म के रूप में है। वो एक यक्ष का रूप धारण कर लिया और सरोवर में वहीं पर रह गए। पांचों पांडवों में से बड़ी प्यास लगी तो उन्होंने भीम को पहले भेजा। भीम जा देखो ये पानी कहाँ है। तालाब में गए प्यास लगी तो सोचा जैसे पहले पानी भी पी लूं उनके लिए ले जाऊं किंतु यक्ष ने मना किया अंतरिक्ष के रूप में रहकर पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तब जाओ। उन्होंने कहा कौन यक्ष है कैसा बलवान होगा। वो उन्होंने उसकी याद ये नहीं की और वहां पानी पिया। पानी पीते हुए मर करके गिर गए। अर्जुन आए उसी प्रकार से वो भी गिर गए। नकुल आए सहदेव आए चारों भाई गिर पड़े। अंत में महाराज युधिष्ठिर आए तो उन्होंने पूछा वहां आवाज हुई भाई पहले पानी पी करके तब पहले उत्तर दे करके तब पानी पियो। तो उसने कहा अच्छा था आप आइए जो कोई है हमारे सामने आकर के प्रश्न कीजिए। तो वो यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने आया। कहा जैसे आप क्या चाहते हैं तो हमारे पांच प्रश्न हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। कहा जी क्या आपके प्रश्न है याद है।
किमाश्चर्यम
किमाश्च काच वार्ता किमाश्चर्यम काच वार्ता
कपंथा
कश्च मोदति इत्यादि ये प्रश्न किया। उन्होंने कहा जे का पंथा, पंथा क्या है, पथ क्या है जगत का, और प्रथम पंथा आश्चर्य जगत में आश्चर्य क्या है, और कश्च मोदते जगत में कौन सा आदमी प्रसन्न रहता है, और काच वार्ता, वार्ता क्या है माने बात क्या है जगत में, और अंत में कैसे आदमी प्रसन्न रहता है। तो उन्होंने कहा एकमात्र महाजनो जैन गता सपन था। महाजन कौन, ब्रह्मा जी, शंकर जी, प्रहलाद जी, जन महाराज, नारद, शंभु, ये सब जो है द्वादश महाजन है, भीष्म पितामह,
कुमार, कोपुल, मुनि,
ये लोग भगवान का भजन करके गए हैं, इसलिए महाजन जी इस पथ से गए हैं। ये भजन का पथ ही एकमात्र पथ है, और सपथ कंट का किरण है, उसमें पतित होने की संभावना है, इसलिए भक्ति का पथ ही एकमात्र पथ है। वो कहाँ है पथ, वो साधुओं के हृदय में है, कोई कोई जानता है उस चीज को, अत्यंत गुप्त रूप से है। काच वार्ता किम आश्चर्य, अरे प्रतिदिन आदमी जन्म लेता है, प्रतिदिन आदमी लाखों आदमी मरते हैं और लाखों आदमी जन्म लेते हैं, और मर करके भी आश्चर्य की बात है, कोई नहीं सोचता जब मैं कल मर जाऊंगा या कब मर जाऊंगा, इसलिए हमको सावधानी रहनी चाहिए, ये कोई नहीं सोचता, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या। काल एक बड़ा भाई कड़ा ही है ये संसार कड़ा, उसमें समय आग लगा करके और उसको तेल जो है उसमें आसक्ति संसार के प्रति ये खोल रहा है, आसक्ति के द्वारा सबका चित्त क्षुब्ध हो रहा है, अशांत जगत है, भट्टी जल रही है, कड़ाही भी जल रही है, और उसमें सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं, यही तो वार्ता है। और कलछी जैसे उसको ऐसे ऊपर नीचे करती है ना, ऐसे ये काल कर रहा है, सभी काल के अंदर में जा रहे हैं, और कश्चमोदते भाई भगवान का जो नाम लेगा कलयुग में वही लोग प्रसन्न रह सकते हैं, और कोई प्रसन्न नहीं रह। महाभारत में श्लोक है, इन बच्चों को याद है हमें वो श्लोक, मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से यक्ष के पांचों प्रश्न उत्तर देने के बाद में उसने कहा कि आपके चारों भाइयों में से जो गिरे हुए हैं उस एक भाई किसी को उठा लो, कोई उठ जाए जीवित करा लो, मैं जीवित कर दूंगा। उसने कहा जे सबसे हमारी मैया थी नहीं,
नकुल जी जाए,
नकुल जी जी जाए, कहे नकुल को क्यों जीव लाते हो, अरे तुम्हारा अपना खास कुंती का बेटा है भीम या अर्जुन उसमें जिला लो, कहे नहीं हमारी मैया दो थी कुंती और माद्री, कुंती का बड़ा मैं पुत्र हूँ और माद्री का पुत्र है बड़ा
नकुल,
इसलिए नकुल जी कहो तुम तो बहुत सत्यवादी और धार्मिक हो, तुम्हारे सभी भाई जी उठे, सब भाई यहाँ पर जीवित उठे। ये महाभारत का ये सबसे मुख्य बात, इसे ये प्रसिद्ध नहीं है बल्कि प्रसिद्ध है किस लिए, कृष्ण की लीला का स्थल है, गोपियों ने कृष्ण की कामनाएं पूर्ण की, विश्व ब्रह्मांड की कामना पूर्ण करते हैं कृष्ण, और उनकी कृष्ण की कामनाओं को पूर्ण करके उन्हें कृष्ण को संतुष्ट करती हैं ये गोपियां, इसलिए ये काम में बन है। लोगों की धारणा है जैसे इसको कुछ लोग आदि वृंदावन कहते हैं, वृंदावन है इसमें तो 16 कोष 84 कोष में ब्रजमंडल है, वृंदावन की परिधि एक है वृंदावन वन 5 कोष में, और एक है 16 कोष, 16 कोष में वृंदावन है, विष्णु है, विष्णुपुर है, और गोवर्धन है, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब 16 कोष के अंतर्गत में है, माने 32 माइल के घेरे में है, और एक है 84 कोष में, ये 84 कोष के अंतर्गत में है वृंदावन। यदि इसको मान लिया जाए तो अभी आधुनिक जो अभी जो वृंदावन है वो क्या है, भागवत इत्यादि के अनुसार में यहाँ पर यमुना जी बहती हैं, जहाँ पर गोपियों का चिरहरण हुआ
किसी घाट है, बंसी बट है,
जहाँ पर बंसी बट है
किसी घाट,
जहाँ पर राक्षसस्थली है, जहाँ पर बंसी बट है, जहाँ पर राक्षसस्थली है, जहाँ पर काली को दमन किया था,
नगर में ही नहीं था, ये वाले कुल मिला
तो यह है वृंदावन। वैसे ये वृंदावन है उस रूप में, व्यापक रूप में है, किंतु यथार्थ रूप में पंचक्रोशी इत्यादि के रूप में 16 कोश के रूप में। इसलिए यह पवित्र, बहुत परम पवित्र काम्य वन और कृष्ण को अत्यंत प्यारा है। इसके बाद में कुछ दिन कृष्ण रहे और इसके बाद में शेरगढ़ आप लोग जानते हैं जिसको खेलन वन कहते हैं, उधर में चले गए। भय गांव एक है जिसको नंद घाट कहते हैं, वहां पर कुछ दिन रहे। इस तरह से गोकुल मैंने क्या, जहां पर गो गो गोपी इन सब का समुदाय लेकर के चलते रहते हैं, कभी वहां कभी वहां। यहाँ गो का समूह है, ग्वालों का समूह, उसको कहते हैं गोकुल, किंतु वो जो है अभी गोकुल महावन है। और ये है नंदगांव है नंद गोकुल, और ये है काम्यवन का गोकुल। इस तरह से सभी गोकुल है और सब जगह कृष्ण ने लीलाएं की। हम लोग आज यहाँ पर आए, हमारे महंत जी के आप लोग सब अतिथि हैं। अब यहाँ से हम लोग काम्यवन यहाँ को इधर से परिक्रमा करते ही पूरी करके और फिर यहाँ से हम नंदगांव चलेंगे। वहां पर चरण पहाड़ी जहाँ पर अक्रूर जी ने कृष्ण के चरणों की वंदना की थी वहां पर चलेंगे, और इसके बाद में समय मिलेगा तो देखेंगे। तो टेर कदम में हम चलेंगे जहाँ पर कि कृष्ण गोचारण करते समय कदम्ब से टेर करते थे, सामली धौली चित्रा कदम्बिनी
गंगे
गंगे पिशंगी कालिंदी ये सब गायों को पुकारते या गोपियों को और सखाओं को पुकारते थे। वहां पर जाएंगे जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, जो कि नंदगांव और जावट दोनों के बीच में स्थित। बोलो जय जय श्री राधे। अब आप लोग चलिए
দুর্যোধন এখানে পাণ্ডবগণ কে অপমান করবার জন্য এসেছিল, কিন্তু সে অপমানিত হয়ে ইন্দ্রের দ্বারা আর তারপরে এখান থেকে চিত্ররথের দ্বারা নিজেই অপমানিত হয়েছে। এইখানে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করবার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্তমধ্যে পাণ্ডবগণ ওদেরকে দণ্ড বিধান করে দিয়ে এখানে শাস্তা করেন। এই সবগুলি পবিত্র স্থান, আজকে আমরা এখান থেকে প্রণাম করে দিয়ে তারপরে চলি
নন্দলে সনন্দন সনাতন নারদেড্য গোপীশ্বর ব্রজবিলাসী যুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে প্রীতিম প্রয়চ্ছ নিতরাম নিরুপাধিকাম্যে।
राधा कृष्ण के चरणों में हमको ये प्रेम दे, इसे बढ़कर के कोई कामना नहीं है। चार शंकर, चारों पांचों यहाँ पर शंकर हैं, मथुरा में भूतेश्वर, पिपलेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्णेश्वर, भूतेश्वर, और वृंदावन में गोपीश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, और यहाँ नंद गांव में नंदीश्वर, और यहाँ पर है कामेश्वर। बड़ी भारी कामना लेकर के ये तपस्या कर रहे हैं शंकर जी। शंकर जी ये तपस्या कर रहे हैं, शंकर जी का तपस्या का स्थान है, वो क्या कामना कर रहे हैं? पौर्णमासी जी की आराधना की तो फिर ये गोपी बने, गोपी बनकर के उनकी कामना भी पूरी नहीं हुई है। पूरी कब होगी? यदि वो राष्ट्रस्थली में प्रवेश कर सके, इसलिए उसके लिए यहाँ पर बैठ करके निर्जन स्थान में एकांत में और ये कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने कहा अच्छा, तब वृंदावन में जो आएगा उनको तुम मार्गदर्शन करके वृंदावन में तुम प्रवेश कर रहे हैं, ये उनको अधिकार दे दिया है। इसलिए इनका अधिकार है, इन लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को भी हमारी कामना पूर्ण ये करें, और इनकी यही प्रार्थना करके तब हम लोग अब नंदगांव की तरफ में चल रहे हैं। गौर प्रभात।
टू ब्रिंग कृष्ण फ्रॉम नंदगांव टू मथुरा,
Akrup came to this place and saw in earth so many footprints of Krishna, in which kalas, chakra and so many chinha,
signs
were there. And he at once knew that these are the footprints of Krishna. He came out of the chariot and fell flat, keeping his heart on the lotus feet of Krishna. He also came and saw this. He at once fell flat on this and began to pray in Srimad Bhagavat. In so many slokas it has been explained. He was a devotee of Dasharas. So he prayed that I want to see Krishna, but Krishna will speak or not speak. So after this he went to Nandagaon, and in the night he met Krishna and Baldev. They honored him and they promised that we shall go to Mathura and kill Kamsa and save Vasudev Devaki. He took them to Mathura and Krishna killed Kamsa there. After so many days, again Uddhava came by the order of Krishna. Here he went to Nanda Maharaj, and for whole night he was seeing the mood of Nanda Baba, and he used to feel so wonderful that I have heard Krishna Prem, but I have not seen in anyone, but I am seeing here Krishna Prem in Nanda Baba Yashoda Devi. At last we went to Gopis. Gopis told that, who are you? Who is he? He is cruel again, he has come. Why he has come? He has come. There is so many reasons. Kansa is killed, we have heard. Now he has come to mix what?
Innumerable ceremony.
Funeral ceremony. And he wants some dead bodies, this heart. He knows that all the gopis and gopis have dead in separation of Krishna. So he had come to take our hearts to make funeral ceremony of Kamsa. Oh, he has come in the shape of a prince on the golden chariot. Krishna has sent a golden chariot with his servant to show that now I am a prince, not as a cowherd. My mother will see and perhaps he will be so sick. He will say that so glorious my son has become the son of Vasudev and Devaki. And he is sitting on the golden chariot. Then Uddhava told that I should die here. If the earth will be in two pieces, I want to go. I should not have come here in golden chariot. This is no way to satisfy gopis. At last he, in Srimad Bhagavat, Bhramar Gita has been told there. What was the state of gopis? Separation mood was there. All these things have been narrated in Srimad Bhagavatam. You can see all these things there. Today is no time here. We have to go to Mathura, and I will try that this Bhramar Gita I may explain very shortly there.
इन टू आर थ्री डेज आई विल ट्राई। हम लोगों को अब यहाँ से प्रणाम करके हम लोग चलेंगे और वहाँ पर इस सब की बातें कल हम लोगों का भी शाम रहेगा, कल हम उन्हीं पर करेंगे और परसों फिर हम लोग रामघाट चीरघाट बिहार बंद मिलन बंद तपो बंद अक्षय बंद और वत्स बंद इत्यादि बहुत से जगह आज यहीं से हम लोग यहाँ पर प्रणाम करें उद्धव की तरफ में। हम लोगों पर कृपा करें
अटेर कदम के लिए प्रणाम।